ओम शांति, ओम शांति। सर्वप्रथम आप सबको मधुबन आने की सेवा के लिए या भट्टी के लिए ये सौभाग्य पाने की, विशेष करके आज के इस सत्र में उपस्थित होने की आप सबको बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत स्वागत है। हम सब जानते हैं कि ये दिन, ये पल बड़े अनमोल है, संगम के सबसे सुंदर समय। मधुबन में पांडव भवन की भट्टी में आना या सेवा में आना, ये बहुत बड़ा भाग्य है। पद्म पदम भाग्य, बहुत बड़ा भाग्य, क्योंकि यहां की ऊर्जा, मधुबन की एनर्जी, मधुबन की भूमि धरणी, यहां की, यहां के वाइब्रेशंस बड़े ही शक्ति प्रदायक हुए, अद्भुत है। यहां पर आने मात्र से ही सहज आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाती है। धरणी तो है ही वरदानी, लेकिन वो भी भाग्यशाली होते हैं जो मन बना करके पूरी तन्मयता के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरा दिल दिमाग से, जानो जिगर से, उमंग उत्साह के साथ, संजीदगी के साथ, बड़ी ही समर्पण मेहता के साथ इस समय को सफल करते हैं। जो कुछ भी मिल रहा है, इनको हमेशा के लिए अपने पास संजो कर रखे। ये दिन हो सके तो डायरी बना ले और डायरी में दिन नोट करें, एक एक पल नोट करें कैसा बीत रहा है। याद में रहकर कर्म करें जो यादगार बन जाए, याद में रहकर कर्म करें जो यादगार बन जाए, और कर्म हमारे ऐसे हों जग जिसके कीर्तन गाए। हमारे कर्म की कीर्ति गाते हैं, कीर्तन के रूप में भक्त, तो ये पल बड़े अनमोल हैं। तो एक बार फिर से आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें पाप की दुनिया से निकाल चैन की दुनिया में ले जाने। अभी बाप तुम्हें क्या देते हैं, क्या देते हैं? सुख शांति की सौगातें देते हैं, सुख शांति की सौगात। बहुत सौगात मिलती है, बहुत मिली है ना, सबको मिली है सौगात, मिली है ना, अभी भी सौगात मिली ना, सौगातें मिली हैं। ये संगम युग की सौगात बहुत है, और बाबा दो बातों में सारी सौगातें आ जाती हैं। बाबा सुखी बना देता है और शांत बना देता है। सुख और शांति की दो सौगातों में सारी सौगात आ जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चों को दो सौगातें देते हैं। वे प्रश्न बाबा कहते हैं, पूछते हैं कि इस दुनिया में तुम हो सच्ची सच्ची नंस। सच्ची नंस कौन कहला सकते हैं, उनकी निशानी क्या है? हाँ, कितनी गहराई की बात बाबा कह देते हैं बात बात में, कि सच्चे नंस वो हैं जिनकी बुद्धि में एक ही याद है, एक ही याद, अर्थात नन बट वन, नन बट वन, ये याद है। वो नंस भले कहलाती हैं, लेकिन उनकी बुद्धि में सिर्फ क्राइस्ट ही नहीं, क्राइस्ट तो गॉड का बच्चा है, उनकी बुद्धि में तो दोनों आएंगे, दो हैं, और तुम बच्चों की बुद्धि में कौन है? सिर्फ एक, सिर्फ बाप है। इसलिए तुम सच्ची सच्ची नंस हो। तुम्हें बाप का क्या फरमान है? बच्चे पवित्र बनो, पवित्र बनो। पवित्रता की फरमान बाबा देते हैं। फिर धारणा सार में बाबा क्या कहते हैं? इस दुनिया से क्या है, हमको सच्चे सच्चे नंस बनना है, एक बाप की याद के सिवाय और कुछ भी याद ना आए, है ना? कोई चीज कोई विकर्म करके उसको छिपाना नहीं, अपने छिपा करके ठगना नहीं है। धर्मराज बाप से सदा सच्चा रहना है, सच्चा रहना है, और ज्ञान चिता पर बैठकर इस पढ़ाई की रेस करके नई दुनिया में ऊंच पद लेना है, और साथ में क्या करना है, योग अग्नि में विकर्मों को, जो पाप के खाते हैं उनको दग्ध करना है। पूरी मुरली लगभग एक बात के केंद्र में चलती है कि सच्चे बनो, सच्चाई और सफाई, सच्चे सच्चे बनो, ठगो नहीं अपने आप को, धर्मराज बाप से सच्चे बनो, साफ रहो। वरदान भी यही है कि बुद्धि की प्रीत एक प्रीतम से रखकर सदा सम्मुख रहने की अनुभूति करने वाले विजयी रतन बने। ये भी वही है कि हमारे दिल दिमाग में, हमारे बुद्धि में सिवाय एक बाप प्रीतम है, उसके अलावा कोई याद ना आए, कुछ भी याद ना आए, और इतनी फीलिंग आए इसकी कि जैसे हम सन्मुख बाबा के सन्मुख बैठे हैं, वो मेरे सन्मुख है, है ना? मामा क्या कहती थी, किसी ने मामा से पूछा कि मामा आप बाबा की मुरली इतनी बार क्यों पढ़ते हैं, आप तो विद्या की देवी हैं, आपको तो सब याद रह जाता है, हो जाता है। कहता है नहीं, मैं इसलिए नहीं पढ़ती हूं याद करने के लिए, जितनी बार पढ़ती हूं, जब तक पढ़ती हूं तब तक बाबा हमारे सन्मुख होते हैं, बाबा मेरे सामने होते हैं, मैं उससे दूर नहीं हूं। ये फीलिंग आती है मुरली सुनते सुनते, मेरे बाबा मेरे सामने। और आप सबको ये भी पता है कि जब बाबा की मुरली, मम्मा मुरली चलाते थे, बाबा का टाइम होता था, बाबा चुपके से आते थे, सोचते थोड़ा सुन लूं, लेकिन बाबा के पद चाप सुनकर, कदमों की आहट सुनते ही मामा वहीं पर सेंटेंस पूरा हो ना हो वहीं पर रोक देती थी। तो बाबा कहते बच्ची सुनाओ सुनाओ, लेकिन बिल्कुल नहीं, और साइड में बैठकर एक ऐसे बाबा को लगातार वैसे देखती थी जैसे चांद को चकोर देखता हो, चांद को चकोर देता है, देखता है, इस तरह से बड़ी लगन मामा की थी। वो वही थी कि बाबा को सम्मुख अनुभव करती थी। हम सबको भी ऐसे ही बनने के लिए, करने के लिए बाबा कहते हैं, दिल बुद्धि में एक प्रीत रख, एक प्रीतम के साथ सम्मुख ही, सदा सम्मुख की अनुभूति करने वाले विजयी रतन बनो। और सच्चाई सफाई के संबंध में आज का स्लोगन भी था, क्या स्लोगन है? चाहिए चाहिए का संकल्प आना, ये भी रॉयल रूप से मांगना है, रॉयल रूप से मांगना है। एक बार बंबई में गीतों की रिकॉर्डिंग हो रही थी और हम गए थे, तो एक गीत लिखा था, आपका प्यार बाबा बरसता रहे, आगे वाला लाइन नहीं थी, कुछ लाइन थी वो अलग ही, आपका प्यार बाबा बरसता रहे, इस जमाने से कुछ भी नहीं चाहिए, पूरा गाना चाहिए में लिखा था। जब रिकॉर्डिंग होने वाली दूसरे दिन थी तो मेरे मन में आया कि चाहिए चाहिए ये चाहिए का चुहिरा नहीं आना चाहिए, ये भी निकाल देना चाहिए, क्योंकि बाबा कहते हैं चाहिए चाहिए एक शब्द ही हमारी डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए। तुम ब्राह्मणों को कभी चाहिए की बात ही नहीं बोलना चाहिए, ये होना चाहिए, वो करना चाहिए, या हमको ये चाहिए, उनको ये चाहिए, ये चाहिए चाहिए खत्म कर दो। तो गानों में भी लगभग नहीं प्रयोग करता हूं, तो उसको पूरा रात को ही लाइन बदल दी, आपका प्यार बाबा बरसता रहे, हम सितारे यूं ही जगमगाते रहें, और क्या करना है। तो इस तरह से चाहिए चाहिए का संकल्प आना स्वयं में, ये क्या है, ये भी रॉयल रूप से मांगना है। हम मांगते हैं ना, ब्राह्मण भी मांगते हैं, खास करके जब मुश्किल आती है, कोई बात घड़ी आती है, तो मन से कहते हैं कि बाबा अब तक तो हम आपसे कुछ भी नहीं चाहते, लेकिन ये काम जरूर चाहिए, अब आपकी मदद चाहिए, आओ बाबा आप ये कर दो, हमारा काम कर दो। ये रॉयल रूप से कभी कभी तो मांग भी लेते हैं हम लोग, मांगना ठीक है, मांगना ठीक है, बाबा तो कहता है नहीं मांगो, लेकिन हम मांग लेते हैं, डॉक्टर साहब मांगना चाहिए। तो बाबा कहते हैं तुमको मांगना भी नहीं है, चाहिए चाहिए भी नहीं चाहिए। अब जब इशारे में भी बाबा यही कहते हैं, संपूर्ण पवित्र बनने की बात कहते हैं, संकल्प में, वाणी में और कर्म में भी हम ब्रह्मचारी के साथ साथ ब्रह्माचारी बन जाए। तो संपूर्ण मुरली में आज बाबा की बात को हमने ये समझा और अनुभव किया कि बाबा हम सब से चाहते हैं कि हम सब अपने बुद्धि की प्रीत एक प्रीतम बाप से रखें और सदा साथ का अनुभव करें और निरंतर साथ का अनुभव करते हुए विजयी बन जाए। तो आइए विचार कर लेते हैं आज की मुरली से ही कि हमारी दिनचर्या में ऐसी कौन सी चीजें आए जो हम बाप के सच्चे बच्चे बन जाए। थोड़ा ध्यान रखें तो हम बाबा के बड़े करीब अनुभव कर सकते हैं, सम्मुख अनुभव कर सकते हैं, सम्मुख अनुभव कर सकते हैं। तो ठीक है, आप सब नोट भी करेंगे और धारण भी करेंगे, आज की बात को पक्का करेंगे। एक गीत याद आया, प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। सच्चे दिल पर साहब राजी, हर श्रीमत पर कहे हां जी, एक बाबा दूजा न कोई, वादे के पक्के पक्के हैं, प्रभु आपकी यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। प्रभु सत्य है, शिव है, सुंदर है, सब पर प्यार निरंतर है, सांच को कोई आंच नहीं, खुशियों में नाचते रहते हैं, प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे। कोई खूबी और रहे न रहे, कोई खूबी और रहे न रहे, पर दिल का सच्चा साफ रहे, पर दिल का सच्चा साफ रहे, है ना। और जो बाप के सिवाय कुछ नहीं रखते हैं, ऐसे वादे के पक्के पक्के हैं, एक बाबा दूजा न कोई, वादे के पक्के पक्के हैं, प्रभु आप की यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं, जो दिल के सच्चे सच्चे। तो सच्चाई और सफाई, एक प्रकार से ऑनेस्टी, हम अपने दिल पर हाथ रखकर पूछें कि ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करने के बाद हम कितने ऑनेस्ट हैं, कितने ईमानदार हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि सब बेईमान हैं, हम सब बेईमान हैं, लेकिन ऑनेस्टी की अलग अलग परसेंटेज है। उस परसेंटेज से उन बातों से हम जरूर अनुभव करें कि हम बाबा से कितने ऑनेस्ट हैं। और सही बात यही है कि यदि हमारा बाबा से योग लग नहीं रहा है, संघर्षशील हैं, मेहनत कर रहे हैं, आत्मविमानी बनने की मेहनत कर रहे हैं, निरंतर याद की मेहनत कर रहे हैं, संस्कार परिवर्तन की मेहनत कर रहे हैं, या संपूर्ण पावन बनने की मेहनत कर रहे हैं, तो मेहनत तो हम कर रहे हैं, लेकिन मेहनत में तब तक सफलता नहीं मिल सकती है, विजयी नहीं बन पाते हैं जब तक हम बाबा से पूरे ऑनेस्ट ना हो। पूरे ऑनेस्ट होंगे तो ही बाबा से हमारी सच्ची ईमानदारी के आधार पर बाबा से दिल की प्रीत रहेगी। मैंने अपने जीवन के अनुभवों में ये अनुभव किया है कि सच पूछा जाए तो हम कुछ और कर न सकें या हमसे ज्यादा मेहनत नहीं होती, लेकिन अगर हम सच्चाई सफाई ले लें, ऑनेस्ट हो जाएं, तो बाबा से निरंतर याद हो सकती है। यह अनुभव कहता है। तो ईमानदार कौन है, उसकी पहली विशेषता है सच्चाई और सफाई। दादी, एक बार मीडिया कॉन्फ्रेंस हो रही थी, दादी प्रकाशमणि के दिन है, बहुत यादें हैं, ढेर सारे अनुभव हैं, साथ साथ रहने के अनुभव हैं, सालों साल 40 साल दादी के साथ रहे, बहुत प्यार मिला, अद्भुत, एक एक पल में जो दादियों का प्यार मिला वो सब याद आता है। तो दादी ने कहा कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला, मैंने एक पक्का किया और मैंने कभी जीवन में झूठ नहीं बोला। वो बात दादी की अभी तक भी याद है, सबको याद है, ये आसान काम नहीं होता है। जीवन में कभी झूठ नहीं बोलते, हम तो बात बात में झूठ ही बोल लेते हैं, हर बात में अपनी बात को अच्छा बनाने के लिए कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। तो सच्चाई और सफाई एक ऐसा गुण है, इसके आधार से हम बाबा के बहुत करीब आ सकते हैं। ऑनेस्ट, नोट करें, इस पर विचार करें, सच्चाई और सफाई क्या है, क्या है सच्चाई सफाई? सच्चाई हमारे संकल्पों में आए, संकल्पों की सच्चाई क्या है? जब तक हम आत्माभिमानी नहीं बनते तब तक हमारी सच्चाई नहीं होती। बाबा कहते हैं सत्य स्वरूप को जानना, स्वयं के सत्य स्वरूप को मानना और सत्य स्वरूप में स्थित रहना, यानी देही अभिमानी बनकर रहना। अगर हम देह अभिमान में रह करके हम जो कितना भी सत्य बोल लें वो सत्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि देह अभिमान के वश में होकर किया गया कोई भी कर्म वो सब पाप के खाते में जाता है, व्यर्थ के खाते में जाता है। आप इसमें समझ सकते हैं कि सच्चाई सफाई क्या है। इसलिए जितना हो सके आत्म अभिमानी बनने की लगन में मगन हो जाए। यह लगन में मगन होने की बात है। सब कहेंगे हम सब चाहते तो हैं आत्मअभिमानी बनने की, लेकिन ये कोशिश हमारी अपर्याप्त है, एनफ नहीं है, इसको बहुत कुछ करना है। अभी तो मैं समझता हूं कि बाबा जो कहते हैं बच्चे चलते फिरते भी तुम्हें देही अभिमानी बनना है, इस सब्जेक्ट में अभी हम बहुत कच्चे हैं। कुछ पल के लिए हम बैठते हैं, याद में बैठते हैं, बीच बीच में कुछ मेहनत भी कर लेते हैं, मैं आत्मा हूं, मैं महान आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं आत्मा इस शरीर को चला रही हूं, ये सब बीच बीच में थोड़ा बहुत हो भी जाता है। चलो कुल मिला के एक घंटा हो जाए, हो सकता है दो घंटा हो सके, हो सकता है दो तीन घंटे भी कोई हो सकते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं निरंतर रहो देही अभिमानी स्थिति में। इसको मैंने जब आया मधुबन में तो अनुभव किया कि इसकी बड़ी आवश्यकता है आत्मभिमानी बनने की। मैं किचन भोजन बना रहा था, एक छोटा अनुभव प्रायः सुनाया करता हूं क्योंकि वो बड़ा विचित्र रहा। तो भोजन बनाते बनाते मैंने दादी भोली दादी को कहा कि दादी मुझे भट्टी करना है। कहते भट्टी करना है? कहा कहा कब जाना है, कहां जाना है? मैंने कहा दादी कहीं नहीं, ओम शांति भवन नया नया बना था, 84-85 के लगभग की बात है, तब ऊपर खाली था। तो मैंने कहा दादी आत्मभिमानी दादी भट्टी के लिए जाना है, ये नहीं बताया कि इसमें क्या करना है। वहां गया और पूरा सारा दिन यही संकल्प था कि रोज रोज मैं आत्मा हूं कर रहा हूं, कुछ होता तो है नहीं, कुछ करना जरूर है। और यही एक संकल्प लेकर के मैं पूरा दिन लग गया, पूरा दिन बीत गया, कुछ हुआ ही नहीं, लगा रहा पूरा दिन लगने के बाद भी। तो मेरे मन में आया कि जब तक कुछ मिलता नहीं है तब तक छोड़ना नहीं। दूसरे दिन फिर छुट्टी ले लिया, मैंने कहा दादी एक दिन और छुट्टी चाहिए। ठीक है, दूसरे दिन भी लग गया, फिर दूसरे दिन तो बड़ा अच्छा अनुभव हुआ लेकिन लगा अभी भी कुछ बाकी है, तो तीसरे दिन और छुट्टी ले ली। और जो 3 दिन जम करके एक चीज पर जो लगन लगा के आत्मभिमानी बनने की प्रैक्टिस में लगा, आज तक भी वो 3 दिन तो एक हफ्ते तक ज्यादा सब काम भी कर रहा हूं, सेवा भी कर रहा हूं, ना किसी से बोलने का मन है, सबको देख भी रहा हूं, आत्मा आत्मा दिखाई पड़ रहे हैं, सब आत्मा दिखाई पड़ रहे हैं, ये जैसे पूरा ये सूक्ष्म तन बन गया है, सबको मैं देख भी रहा हूं और नहीं भी देख रहा हूं, वो आज तक भी भुलाए भूलता नहीं। इसलिए हम सब भाई बहनों को चाहिए कि हर चीज को हम थोड़ा थोड़ा तो ले रहे हैं लेकिन संपूर्ण समर्पण हो करके लगन लगा करके किसी चीज के ऊपर ऑनेस्टी के साथ अगर हम इसमें मेहनत करें तो मेहनत ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें सफलता की संभावना ना हो, होना ही है, पक्का होना है। तो आप सबसे ये मैं चाहूंगा कि यहां से जाने के बाद भी कम से कम एक दिन समय निकाल के सारे दिन जो बाबा हम सब बच्चों से चाहते हैं इस लगन में मगन हो जाएं, आपको कुछ रिजल्ट ओरिएंटेड आपका लक्ष्य मिलेगा। और आप जब एक बार भी अनुभव हो जाए ना तो बार बार वो अनुभव करने का मन करता रहेगा, करीब है। और इसलिए भी मैं कहता हूं कि ये जब भट्टी मैंने की उन दिनों के बाद से तो आत्मचिंतन की इतनी गहराई और मुझे स्वराज अधिकारी बनने का इतना आनंद आने लगा कि आज भी मैं इसमें मगन रहता हूं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जहां तक जितना करना चाहिए उससे भी बहुत दूर हूं, करना बहुत कुछ है लेकिन इतना लगता है कि वो जब तक वो अनुभव नहीं मिल जाता है तब तक मेरी यात्रा इनकम्प्लीट है, पूरी नहीं, मुझे पहुंचना जरूर है। तो उसके लिए लगता हूं। और उन्हीं दिनों में फिर ये गीत बने जैसे तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं, अय आत्मानंतर की निगरानी तू कर अपनी, राजन तनिक तू देख राजधानी देख ले अपनी। ये गीत है भ्रिकुटी की कुटिया में बैठे बैठे पलकें उठा के निहारा करूं, ये गीत है मैं जगमगाती मैं झिलमिलाती सदा मुस्क मैं। ये जितने भी गीत हैं आत्मचिंतन के, फिर बाद में ये आया अनुभव कि मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं, कर्म इंद्रियां कर्मचारी हमारी भ्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं, करें मंत्रणा अपने मन मंत्री से, समाचार पूछें सजग संतरी से, बड़ी सावधानी से इस राजधानी को माया की छाया से पल पल बचा, बुद्धि का मुंसिफ बड़ा न्यायकारी मैं राजा भी राजी सुखी जनता सारी, सुसंस्कारों की सेना सजग है जो दुर्गुण के दुश्मन से धोखा न खाए, खुदा दोस्त की हम पे। आप सब भी करें ऐसे, हाथ रख दें अपने सिर पर, कुछ पल के लिए आंखों को कम करें और फील करें जैसे ये बाबा के किरणों के वरदानी हाथ सदैव मेरे सिर पर हैं। परमात्म कृपा, परमात्म प्रेम, परमात्म अनुकंपा, परमात्म वरदान, निरंतर परमात्म शक्तियां मुझ में उतर रही हैं, मेरे रोम रोम प्रफुल्लित हो रहे हैं, संपूर्ण शरीर आरोग्य प्राप्त कर रहा है, मैं स्वस्थ होता जा रहा हूं, सब कुछ कुशल मंगल है, मेरी राजधानी में सब कुछ अच्छा है, मैंने अटेंशन का पहरेदार लगा रखा है, मैं अपने कर्मचारियों से, राजदरबारियों से अपने राजधानी का कुशल क्षेम पूछता हूं, हालचाल पूछता हूं, मैं निगरानी करता हूं, मैं अंतर निगरानी करता हूं, सबका हालचाल पूछता हूं, ये मुझ पर मैत्री कृपा है। मैं तो माया के अधीन हो गया था, मेरा तो सर्वस्व समाप्त हो गया था, नेस्तनाबूद हो गए थे, लेकिन ये परमात्म मैत्री ईश्वरीय कृपा, उसका मैत्री भाव मुझ पर अनंत बरसा। परमात्मा ने, प्यारे बाबा ने मेरा खोया हुआ स्वराज फिर से दिलाया। खुदा दोस्त की हम पे है छत्र छाया, जो खोया था स्वराज फिर से दिलाया, उपकार उसने किए हम पे इतने कि आभार धरती गगन मिलके गाएं, मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी भ्रकुटि बीच दरबार अपना सजाए। निशिकर बीच बीच में दिनचर्या के बीच में ये संकल्प निगरानी करने का, राजधानी बनाने का, राज दरबार लगाने का ये जरूर करना चाहिए। बाबा भी कहते हैं, बाबा जब लौकिक में थे, बाबा तब से जब ज्ञान से पहले, तो बाबा डायरी रखते थे, उसमें मन मंत्री, पीरू वजीर, बच्चू बादशाह और इनका दरबार लगाते थे, बाबा डायरी में लिखते थे। बाबा जब बाबा को ज्ञान मिला तो बाबा जी मैं आत्मा हूं, फलानी आत्मा हूं, कितनी मेहनत किया। अब जब तक इतनी मेहनत नहीं होगी तब तक ये काम कैसे होगा। इसलिए सच्चाई सफाई इसका पहला गुण है कि हम सब आत्म अभिमानी बनने की तपस्या में मगन हो जाए। यहां से जाने के बाद जो भट्टी में भाई बहने आए हैं वो इसको निरंतर करने के लिए चार भट्टी रोज करें। चार भट्टी, एक है आत्म अभिमानी बनने की तपस्या। ये तपस्या हमारे लिए पहला और अंतिम पाठ है, निरंतर करते रहना है। और जितना अंदर में जाएंगे स्वराज अधिकारी बनने की, उतना ही आनंद आएगा। आएंगे, शुरू में लगेगा कि कैसे जाएं इसमें, लेकिन जब अंतर का संसार, अंतर की यात्रा करेंगे, बड़ा आनंद आएगा। कुछ आपको उदाहरण देता हूं। जैसे आप शरीर खड़ा है, आप शरीर में ही अंतर यात्रा करें, मैं आत्मा यहां से उतर रहा हूं, यहां आ गया हूं, यहां आ गया हूं, आप फील करें जब यहां आ गया हूं तो मैं कैसे हूं, यहां अनुभव करें मैं जो मैं कह रहा हूं मैं यहां आ गया हूं, और नीचे उतरते उतरते पांव के अंगूठे तक आए, फिर नीचे एकदम देखकर देखें कि पूरा शरीर मेरा खड़ा है, अब मैं नीचे से फिर ऊपर कैसे धीरे धीरे करके ऊपर आ रहा हूं, फिर धीरे धीरे करके ऊपर आया, फिर आया मस्तक अपने अकाल तक बैठ गया, फिर आ रहा हूं, फिर उतर रहा हूं, फिर दूसरे पांव में अंगूठे तक, फिर अंगूठे से फिर वापस। इस तरह की शरीर में ही एक यात्रा ऐसे कर ले, ये अंतर यात्रा बड़ी अच्छी लगेगी। एक यात्रा कर ले अपने 84 जन्मों के शरीर रखें, एक आत्मा, मैं आत्मा एक शरीर से निकल रही हूं, फिर दूसरे में, जब दूसरे शरीर में आता हूं तो जितना सतोगुणी शरीर, सतयुगी शरीर है उसका अनुभव कर रहा हूं, कितना सुख मिल रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। फिर धीरे धीरे करके जैसे जैसे कलाएं कम होती हैं, मैं अपने 84 जन्मों के शरीरों में प्रवेश कर रही हूं, आप 84 जन्मों में प्रवेश करें, शरीरों में प्रवेश करें, आपका कितना योग लग जाएगा, ये कितनी बड़ी यात्रा हो जाएगी। और जितना देर तक आप उस यात्रा में रहेंगे और उस शरीर में रहेंगे, द्वापर युगी शरीर में कैसे अनुभव हो रहा है, कलयुगी शरीर में कैसे अनुभव हो रहा है, कष्ट है, पीड़ा है, बीमारी है, रोग है, शोक है, सारी उसका अनुभव होता है, फिर संगम युगी में आ जाए, अपने अंतिम जन्म के शरीर में आ जाए। तो ऐसे करके आप क्रम से ऐसे करेंगे, ये भी यात्रा हो जाएगी। एक यात्रा शरीर एक्सपीरियंस आउट ऑफ बॉडी, ये कर सकते हैं, जैसे मैं यहां छत पे आ गया हूं, यहां मेरा शरीर है, और ऊपर से देखें कि नीचे ये माइक है, ये बैठा है, ऊपर से देख रहा हूं कि सब दिखाई पड़ रहा है, फिर और ऊपर जाता हूं, वतन में जाता हूं, तो ज्यों ज्यों जाता हूं नीचे की सब दिखाई पड़ता है, मैं देखता हूं अपने सूक्ष्म नेत्रों से, मैं फरिश्ता उड़ के जा रहा हूं, ये जाए परम वतन में जाए, सूक्ष्म वतन में जाए, फिर बाबा के पास बैठे, फिर वापस आए, फिर जाए, फिर आए, फिर परमधाम की यात्रा करें, परमधाम में वहां पर बाबा के साथ फ्लोटिंग करें, जैसे आप उड़ रहे हैं वहां पर सागर में, लाल प्रकाश के समंदर में, जैसे बड़ी मछली और छोटी मछलियां हैं, वो सब घूमते रहे पूरा वातावरण पूरा, फिर देखें पंछी की तरह बाबा आगे आगे और हम पंछी जो है बाबा के पीछे पीछे उड़ते रहे, कितना आनंद है। बीज रूप स्थिति का भी ऐसे अनुभव है, बड़े विचित्र हैं, इन सबको बड़े रचनात्मक रूप में, बड़े हल्के रूप से, बड़े ऐसे करके क्रिएटिव काम करें, और समय मिले तो नोट कर लें और क्या क्या कर सकते हैं, कभी समय मिले तो नोट करें, 10 दृश्य ऐसे बनाएं कि मैं परमधाम में क्या हूं, वहां पर ढेर सारे दृश्य बन सकते हैं, आप उनको क्रिएट करें, उनमें संकल्प करें, तो देखें बहुत आनंद आएगा। मैं तो ये भी अनुभव करता हूं कि बाबा के पास बैठा हूं, बाबा है और हम सब है, आत्माएं सितारे हैं, बाबा से स्ट्रीम आ रहा है और हम तक जा रहा है, और पूरा कल्पवृक्ष जैसे वहां तक सूक्ष्म वतन तक जैसे ऊपर तक आया है, कल्पवृक्ष जड़े हैं, बाबा से स्ट्रीम आ रहा है हम पर और हमसे स्ट्रीम जा रहा है कल्पवृक्ष में, और रिश्ते 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 नीचे सारे पत्तों में पूरे पेड़ को हरा भरा कर रहे हैं। अब ये कितना अच्छा दृश्य है, इसमें सेवा भी है। अच्छा, सूक्ष्म वतन बैठ गए हैं, बाबा बैठे हैं, हम सब बैठे हैं, दादियां बैठी हैं, और सामने ग्लोब है, इतने फोर्स से दे रहे हैं, सकाश की सेवा कर रहे हैं, ग्लोब को दे रहे हैं। कभी कभी ऐसा मौका मिले तो सूक्ष्म वतन में बैठे हैं, फिर बाबा आपको वेलकम करते हैं, बाबा उंगली पकड़ करके आपको सूक्ष्म वतन का सैर कराते हैं, जिससे संदेशी बहनों को बाबा वतन में दृश्य दिखाते हैं, पहाड़ी प्रकाश की पहाड़ी दिखाएंगे, कितने वो जगमगाते दिखाएंगे, ऐसे करके आपको लगे कि जैसे दादी का हाथ पकड़ के बाबा 18 जनवरी को सवेरे पूरा घुमा रहे थे, दिखा रहे थे, बच्ची देखो ये स्टोर है, बच्ची देखो बाबा यहाँ पर ये बना रहे हैं, बच्ची वहां वो बना रहे हैं, दादी बड़े ध्यान से देख तो रही थी, लेकिन दादी तो पता ही नहीं कि बाबा अपना चार्ज भार सब हमको दे रहे हैं, है? ऐसे ही आप भी गए सूक्ष्म वतन में, बाबा कहता है बच्चे कितना साल हो गया इंतजार कर रहा हूं वतन में, अरे अब तो आओ आओ, चलो तुमको घुमा देता हूं, अब हमको अव्यक्त वतन में रहते हुए इतना साल हो गया, कब तक मैं तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा, अब यहां बैठो आओ, और हमारा जो कारोबार है, जो अपना कारोबार है, यहां बैठ के करो, सूक्ष्म वतन वासी बनो, देखो आपको पूरा सूक्ष्म वतन घुमा रहे हैं बाबा, आप इसको घूमिए। कभी कभी ऐसा भी देखिए कि शांति वन में मैं बैठा हूं, बीचों बीच हॉल में बैठा हूं, और बाबा गुलजार दादी के तन में आए हैं, दादी भी है, शिव जयंती के दिन है, और बाबा पूरे हॉल को चक्कर लगा रहे हैं। आप योग में बैठे वहीं बैठ जाएं और देखें बाबा को उठते हुए आते हुए झंडा लहराते हुए एक एक को दृष्टि देते हुए बाबा को वरदान देते हुए पूरे हॉल को बाबा आधा घंटा चक्कर लगाते हैं। तब तक देखिए कि वो बाबा कैसे आ रहे हैं, कैसे दृष्टि दे रहे हैं, और मैं एक तक भगवान को चलते हुए देख रहा हूं, भगवान को दृष्टि देते हुए देख रहा हूं, धन्य धन्य अनुभव कर रहा हूं। अब आपको आधे घंटे तक देखिए बाबा को चलते हुए, आपका योग लग जाएगा, इसको ही तो योग कहते हैं, ये कितना अच्छा है। इस तरह से सच्चाई और सफाई के अंतर्गत हम ये अनुभव करें कि देही अभिमानी स्थिति का वैरायटी अनुभव करें और मनोरंजक ढंग से। मैं और इसको मनोरंजक कहता हूं कि दरबार लगाता हूं तो मैं राजा हूं और पूरे मेरी कर्मेंद्रियां कर्मचारी हैं, ये जो गीत की तरह। फिर देखता हूं कि चलते चलते कहीं गया, डाइनिंग हॉल में गया, वहां भोजन देख रहा हूं, वहां कुछ अच्छी चीज बनी है, पाव भाजी बनी है, आज पाव भाजी खाए हैं, कभी गुलाब जामुन या आइसक्रीम बना है। अब ठंडी तो लग गई है मुझे पहले से ही, लेकिन आइसक्रीम देख के रुका नहीं गया, मन रुका नहीं, चलो एक ले लिया, मन करता थोड़ा और भी ले लूं, दोबारा भी ले लिया। तो फिर सोचता हूं अब तो मैं राजा रहा नहीं, गुलाब जामुन देखा, रसगुल्ला देखा, उसमें बुद्धि भटक गई, जब खाने पीने में चले गए तो फिर अनुभव होता है अब तो मैं राजा रहा नहीं। तो क्या होता, राजतंत्र बदल गया, अब लोकतंत्र आ गया, डेमोक्रेसी हो गई। तो आत्मा मैं नाम मात्र राष्ट्रपति हूं, मैं आत्मा राष्ट्रपति, और मन हमारा प्रधानमंत्री बन जाता है, और ये दिल, ये दिमाग, ये शिक्षा मंत्री बन जाता है, एजुकेशन मिनिस्टर, ये आंखें कानून मंत्री बन जाती हैं, ये नाक जांच प्रदूषण मंत्रालय यहां आ जाता है, ये मुख सूचना प्रसारण मंत्रालय बन जाता है, ये कान कम्युनिकेशन है, इससे कम्युनिकेशन होता है, ये बन जाता है, ये दांत जो है ग्राम और खाद्य है ना, खाद्य मंत्री है, खाने पीने के काम में आता रहता है, ये जीव अपना काम करता रहता है, ये पेट क्या है, परिवार कल्याण मंत्रालय यहां आ जाता है, ये हार्ट क्या हो तो होम मिनिस्ट्री यहां आ जाती है, ये हाथ क्या है, रोजगार मिनिस्टर है, कुछ करोगे नहीं तो खाओगे क्या भाई, ये टांगे क्या है, ये ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री यहां आ जाती है। तो कितना अच्छा है। तो इस तरह से मनोरंजक ढंग से तब भी करता हूं, खूब आनंद आता है। तो इस तरह से आत्मविमानी बनने की प्रैक्टिस जो है समय के अनुसार बहुत जरूरी है, क्योंकि यही पहला और यही अंतिम पार्ट है, इसी से हमारी यात्रा आगे बढ़ती है। तो सच्चाई और सफाई ये मुख्य गुण है ईमानदारी की। दूसरी बात आती है, वो है अभिमान और अहंकार। ये अभिमान और अहंकार ये ईमानदार बनने नहीं देता है। निरहंकारी बनना, निराभिमानी बनना, यही है ईमानदारी। क्योंकि अहंकार कहीं न कहीं हमको परमात्मा से दूर करता है। यदि योग नहीं लग रहा है, बाबा से निकटता का अनुभव नहीं हो रहा है, बाबा से समीपता की अनुभूति नहीं हो रही है, तो दिल में बड़ा कचोट है, बड़ा अभिमान है। इसलिए दुनिया में भी कहते हैं, लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर, और चींटी शक्कर ले चली और हाथी के सिर धूल। तो ये जो अहंकार है, ये अहंकार ही भगवान से दूर करता है। जितना जितना हम निरहंकारी बनते जाएंगे, उतना उतना ईमानदार बनते जाएंगे। तीसरी बात है इकोनॉमी और एक नामी और इकोनॉमी। एक नामी बनना, आज बाबा यही कहते हैं, एक बाप दूसरा न कोई, एक के अलावा कोई नहीं, नन बट वन। बाबा कहते दिल की सच्ची प्रीत प्रीतम बाप से हो और कोई याद नहीं, सच्चे बनो, बाप से छिपाओ नहीं, सारी मुरली का तंतु, एक बाप दूसरा ना कोई। अब कह तो देते हैं, गाने में भी गा लेते हैं, पता नहीं कितने गाने में गाए होंगे, कितने गाने लिखे होंगे, लेकिन अभी भी एक बाबा से दिल की साथ सच्चाई हो वो नहीं होती है। तो इसलिए एक नामी बने और इकोनॉमी बने। इकोनॉमी वाला बहुत जरूरी चीजें हैं। आजकल तो समय बदल गया है, अब तो हमारे जुबान पर होता है, अरे कोई नहीं भाई, सब चलता है, अरे बहुत लोग देने वाले हैं, हमने थोड़ा दिया तो क्या किया, हमने थोड़ा ले लिया तो क्या किया, सब थोड़े ऐसे है, हम ऐसे सब थोड़े, कोई कोई बना थोड़े है, ऐसे करके अपने लिए ढेर सारी बातें होती हैं। लेकिन ये कि हमारा किया हुआ कोई भी प्रयास इकोनॉमी के प्रयास में, वो सफल तब होगा जब हम उसको प्रैक्टिकल में लाएंगे। कहते हैं एक बार मामा के पास एक बहन गई और शिकायत लेकर गई, कहती दादी मामा वो हमारे जो कमरे में जो दूसरी बहन है वो हमेशा वो निकलेगी कमरे से तो लाइट जला के ऐसे छोड़ के आई। दादी आपको मामा आपको विश्वास ना हो तो चल के देखिए लाइट जल रही। तो मामा कहती अच्छा उसने लाइट छोड़ा और तुम भी छोड़ के आ गई, अब तक लाइट वहां जल रही तो तुम्हारी ईमानदारी कितनी रही, कितनी इकोनॉमी रही, तुमने बंद नहीं किया अभी तक भी लाइट जल रही। तो उसकी उसकी सच्चाई या उसकी बात उसका एविडेंस देने के लिए तुम भी छोड़ के चली आई। तो ऐसा होता है हम सब अपनी तरफ से यज्ञ में कितने ऑनेस्ट हैं। खर्चे में बाबा के समय कोई खर्चा करने आते थे तो अगर 50 रुपया 100 रुपया 1000 रुपया अगर कुछ इस तरह बात होती थी तो बाबा उसको स्वीकार नहीं करते थे। पाई पाई पैसे इतना रुपया इतना पैसा इतना ये जब पूरा सही मिलता था तभी उसको बात को सही माना जाता था, है ना। तो इस तरह से लाइट हो पानी हो खाने पीने में हो, खाने में ऐसा लक्ष्य होता है कि एक चीज भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, थाली भी साफ करके पोछ लेते हैं कभी बर्बाद नहीं करते। लेकिन आजकल समय बदल गया है, देखते हैं वहां पर थाली पर देखते हैं जूठे में लोग क्या क्या फेंक देते हैं, कभी कभी तो आइसक्रीम देखा तो उसमें वो भी फेंक दिए, पनीर देखा तो पनीर ही फेंक दिए, कभी तो रोटियां साबुत ही फेंक देते हैं। कितना फेंका जाता है, ये हमारी इकोनॉमी कहाँ है, ऑनेस्टी कहाँ है, कितनी सौगातें मिलती हैं। अगर हमारे अंदर संग्रह वृत्ति सामानों कलेक्ट करके, एक बार देखा गया एक भाई उसके अंदर सब इकट्ठा करने का बड़ा एक अवगुण नहीं कहते हैं मुख से, लेकिन उसके अंदर एक कलाबाजी आ गई, एक दूसरी कलाबाजी आ गई। तो देखा गया सबकी छतरी वो छाते इतना इकट्ठा कर लिया अपने घर में, जब पता लगा तो कमरा खोला गया तो उसके छाते ही कितना निकले। अब देखिए कोई क्या बात है, क्या मिलता क्या है, लेकिन कहीं न कहीं हमारे अंदर डिसऑनेस्टी है, थोड़ी भी संग्रह वृत्ति है। बाबा कहते हैं भंडारे में गए बिना कुछ पूछे उठा लिया सब ले लिया, अब तो ये नहीं सब अपना ही है सब करते हैं, कितना क्या क्या बात होती है, अब वो चीजें बारीकी चीजें कहां रही है। लेकिन आज भी अगर हम अपने आदर्श इस तरह बनाएं कि हम अपनी तरफ से जितना हो सके बाबा से ऑनेस्ट रहें, इकोनॉमी रहे हमारे अंदर, एक नामी रहे, जितना बचत कर सके संग्रह से मुक्त रह करके, हमें कितना चाहिए, और कहीं मैं तो वेस्ट नहीं कर रहा हूं, चलो ठीक है हमसे वेस्ट भी गया वो भी चलता है, लेकिन वेस्ट करने के बाद भी हम अपने आप को बड़े वो अनुभव करते हैं, रियलाइज नहीं करते हैं कि मैं गलती भी कर रहा हूं। अरे भाई तुम्हारे से वेस्ट हुआ गलती रियलाइज तो करो, ये अनुभव हो कि बाबा मेरे से भूल हुई, इसके लिए क्षमा प्रार्थी है। मुख से बोल तो सकते हैं लेकिन गलती भी होती है, रियलाइज भी नहीं करते हैं, गलती पर और गलती करते रहते हैं। इसलिए बाबा कहते बच्चे भूल हो तो छिपाओ नहीं, छिपाना अपने आप को ठगना है और अपना नुकसान करना है। तो एक नामी इकोनॉमी वाले बने। नेक्स्ट है नाम मान शान की कामना। आज बाबा कहते चाहिए चाहिए या रॉयल मांगना है, हमारा नाम हो हमारा मान हो हमारा शान हो। मैं तो अपने व्यक्तिगत कहता हूं कि दिन भर में गीत गाते हैं, यहां गा रहे हैं वहां गा रहे हैं, अगर साउंड अच्छा नहीं मिला ठीक से नहीं मिला है अच्छा नहीं हुआ तो अपने आप को लगता है कि भाई अच्छा नहीं किया, और कोई व्यक्ति मिल गया कहते हैं आज क्या गा रहे थे आप, ये गा रहे थे वो गा रहे थे, तो बस वहीं पर तो हमारी अवस्था देखो तो क्या होता है, फिर बचाना भी पड़ता है अपने को संभालना भी पड़ता है, फिर बहुत महिमा भी करते हैं भाई बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, महिमा पाके बहुत फूल न जाए और कहीं कुछ ग्लानी हो जाए, कहीं कोई मीन मेख निकाले कोई आलोचना करे तो उसमें हम पीछे नीचे गिर ना जाए, उसमें इसका भी बड़ा ध्यान देना पड़ता है क्योंकि हमारे हर कर्म का, हम तो स्टेज पर हैं तो लोग देखते हैं, महिमा करेंगे ही करेंगे, और महिमा नहीं करेंगे, कोई कोई ऐसे भी हैं जो महिमा नहीं करेंगे। तो ऐसी चीजों में नाम मान शान की एक गहरी प्यास हो जाती है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका वजूद रहे, सब लोग उसको जाने, सब उसको पहचाने, लेकिन हमें चाहिए कि जो कुछ भी मिल रहा है, कोई दे रहा है, भाई बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा बनाया, ये किया, तुरंत ही बाबा की तरफ उसको जो है हम दे दें कि बाबा ये आपने दिया, आपकी देन है, आपकी देन को हम अपना क्यों माने, अमानत में खयानत क्यों करें। इस तरह से ईमानदारी है नाम मान शान की कामना न करना, निष्कामी बनना। नेक्स्ट है परचिंतन और प्रपंच। परचिंतन और प्रपंच ये हमारी ईमानदारी नहीं, ये परमात्मा से बहुत दूर करता है। नेक्स्ट है प्रदर्शन और परदर्शन। अपने हर बात का प्रदर्शन करना और परदर्शन करना, ये भी डिसऑनेस्टी है। नेक्स्ट है संपूर्ण समर्पण मेहता ही संपूर्ण ईमानदारी, संपूर्ण पवित्रता ही संपूर्ण ईमानदारी है, और संपूर्ण समर्पणमय होना, संपूर्ण पवित्र बनना, और बाबा को ही आगे रखना, हर बात में बाबा ही बाबा है, कदम कदम पर उसका धन्यवाद करते चले, पग पग उस पर धन्यवाद करते चले, कुछ और नहीं होता है। जितना जितना हम बाबा को जानते जाएंगे, उतना हम बाबा के करीब आते जाएंगे। इसलिए एक गीत लिखा है, जो तुझको जितना जानता है, जो तुझको जितना जानता है वो तेरे ही गुण गाता है, जो तुझको प्रभु पहचानता है वो तुझसा ही बन जाता है। तो जितना जितना हम जानते हैं उतना उसके करीब जानते हैं। उर्दू में एक शेर है, जब नहीं समझा था तो, जब नहीं समझा था तो कहता था कुछ समझा नहीं, और अब समझ आए तो समझा, अब तो कुछ समझा नहीं। जब नहीं समझा था तो कहता था कुछ समझा नहीं, और अब समझ आई तो समझा, अब तक कुछ समझा नहीं। इस तरह से संकल्प के साथ हम सब आए, अपने को ऑनेस्ट बनाए, बाबा के करीब आए, और बाबा के दादियों के सबके संकल्प को पूरा करें। आपकी भट्टी यूं सफल रहे, आपकी दिनचर्या बहुत अच्छी बन जाए, आप सब आगे बढ़ते रहें। आइए बैठते हैं हम सब और पांचों स्वरूपों का अभ्यास कर लेते हैं। ठीक है, यूं तो बहुत ढेर सारे अभ्यास हैं, लेकिन एक अभ्यास करते हैं। आप भी दोहरा दीजिए, मैं ज्योति सितारा, मैं देव प्यारा, मैं पूज्य न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, फरिश्ता पधारा, मैं ज्योति सितारा, मैं देव प्यारा, मैं पूज्य न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, फरिश्ता पधारा। एक बार और कर लें, मैं ज्योति सितारा, मैं देव प्यारा, मैं पूज्य न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, फरिश्ता पधारा, फरिश्ता पधारा।